नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप रैनोमी से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जीएसटी की नई दरें आज आधी रात से लागू होंगी। आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मोरक्को की 2 दिन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान में बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण करने की मांग की। तालिबान ने दावे को खारिज किया। और खेलों में आनंद कुमार वेलकुमार ने चीन में विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता। और दुबई में एशिया कप T20 क्रिकेट में आज रात भारत सुपर 4 चरण के मुकाबले में पाकिस्तान से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। यह संबोधन आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनलों से भी होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के कारण शाम 5 बजे का हिंदी समाचार बुलेटिन और शाम 5:05 पर अंग्रेजी समाचार बुलेटिन का प्रसारण रद्द रहेगा। प्रधानमंत्री कल अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। इस दौरान वे 5,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत की गई विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी अरुणाचल प्रदेश में 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी ईटानगर में एक सार्वजनिक समारोह को भी संबोधित करेंगे। वहीं त्रिपुरा में प्रधानमंत्री तीर्थ यात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना के तहत मातावाड़ी में माता त्रिपुरा सुंदरी मंदिर परिसर के विकास कार्य का उद्घाटन करेंगे। सेवा और सुशासन के मंत्र से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार निरंतर परिवर्तन और प्रगति के लिए कार्य कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार मोदी सरकार ने UPI क्रांति का नेतृत्व किया है, जिससे डिजिटल भुगतान सभी के लिए सहज, सुरक्षित और सुलभ बन गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने तकनीक आधारित एक गहरी परिवर्तन यात्रा तय की है। इस परिवर्तन के केंद्र में है UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 2016 में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया UPI ने देश के भुगतान तंत्र में क्रांति ला दी है। यह प्रणाली अनेक बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ने की सुविधा देती है। इसके माध्यम से फंड ट्रांसफर, व्यापारी भुगतान और व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन सरल और सुविधाजनक हो गए हैं। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI की शक्ति के बारे में विशेष रूप से उल्लेख किया।
साथियों, UPI का हमारा प्लेटफॉर्म आज दुनिया को अजूबा कर रहा है। हमारे में सामर्थ्य है, रियल टाइम ट्रांजेक्शन में 50% अकेला भारत UPI के माध्यम से कर रहा है।
आज UPI का पैमाना अत्यंत उल्लेखनीय है। केवल अगस्त 2025 में ही UPI ने 20 अरब से अधिक लेन देन का आंकड़ा पार कर लिया। दिल्ली के एक जूस विक्रेता रोहित ने UPI की खूबियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे पैसों का लेन देन बहुत सहज हो गया है और बैंकों पर निर्भरता भी कम हो गई है।
जब से UPI आया है तब से हम लोगों के जीवन में काफी बदलाव आया है, क्योंकि UPI से ना केवल हमारे को बैठे बैठे पेमेंट मिलती है, उल्टा हमारे कहीं भी भेजने के लिए हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, ना हमें बैंक जाना पड़ता, पैसा हमारे डायरेक्ट अकाउंट में आता है, टाइम सेविंग होता है। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के युग में बिना UPI के तो ट्रांजैक्शन, लेन देन, व्यापार कुछ भी पॉसिबल नहीं है। UPI के लिए मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसी ने ही हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया है, बदलाव दिया है।
भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विस्तार पा रही है। वर्तमान में UPI UAE, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस जैसे देशों में संचालित हो रहा है। सहज, सुरक्षित और सुलभ मंच प्रदान करके UPI ने न केवल व्यक्तियों और व्यवसायों को सशक्त किया है, बल्कि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और देश को नकद रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर करने में भी अहम भूमिका निभाई है।
जीएसटी की नई दरें आज आधी रात से लागू हो रही है। आम लोगों को राहत देने के लिए उपभोक्ता वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला पर दरों में कमी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से जीएसटी सुधारों की अगली पीढ़ी की घोषणा की थी। उनका ये सपना 3 सितंबर को साकार हुआ जब जीएसटी परिषद ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर दरों में कटौती की। उपभोक्ता कार्य विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता अब पोर्टल या टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। ये किसी रक्षा मंत्री की मोरक्को की पहली यात्रा होगी जो दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग को दर्शाती है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यात्रा के दौरान रक्षा, रणनीतिक और उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए वे मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्देलतीफ लाउदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमरीका ने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस करने की मांग की है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। उधर अफगानिस्तान के अधिकारियों ने बगराम एयरबेस पर कब्जा करने की अमरीकी धमकियों को खारिज करते हुए कहा है कि एयरबेस पर अमरीका के फिर से नियंत्रण स्थापित करने के किसी भी प्रयास का सख्ती से विरोध किया जाएगा। अफगानिस्तान के खुफिया विभाग के अधिकारी मुल्ला ताजमीर जवाद ने कहा कि सरकार मौजूदा स्थिति को बनाए रखेगी। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि अगर अमरीका अफगानिस्तान से जाना नहीं चाहता तथा अफगानिस्तान में और अधिक हवाई अड्डों पर नियंत्रण चाहता है तो अफगानिस्तान अगले 2 दशक तक लड़ने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नई शिक्षा नीति आज के विद्यार्थियों को शिक्षित करने में सफलता का सूत्र है। आईआईटी चेन्नई में आज दक्षिणपट शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाना होगा ताकि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ने वालों की दर कम हो। दक्षिण कोरिया में भूसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वेब्स बाजार भारत मंडप का औपचारिक उद्घाटन किया गया। वेब्स बाजार जनसंपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा सोल में भारतीय दूतावास के इस मंडप में भारत के जीवंत मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को प्रदर्शित किया जा रहा है। ये मंडप फिल्म, टेलीविजन, गेमिंग और उभरती रचनात्मक तकनीकों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए एक समर्पित स्थान है। देश के विभिन्न हिस्सों में आज महालया का त्योहार मनाया जा रहा है। महालया पितृपक्ष श्राद्ध के समापन और दुर्गा पूजा उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। महालय त्योहार प्रतिवर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास में मनाया जाता है। मान्यता है कि महालय के आज ही के दिन देवी दुर्गा का पृथ्वी पर आगमन होता है। मान्यता ये भी है कि आज के दिन ही देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने शुभ महालय के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दी है। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में पुरुषों की 42 किलोमीटर की मैराथन में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। चीन में आयोजित इस चैंपियनशिप में आनंद ने 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। आनंद कुमार 1000 फीट में 1:24.92 के रिकॉर्ड समय के साथ स्वर्ण और 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीतने के कुछ ही दिनों बाद भारत के पहले स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप बन गए। इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के साथ आनंद कुमार ने भारतीय स्पीड स्केटिंग को विश्व मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है। एशिया कप T20 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दुबई में ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच अब तक हुए 14 मैचों में भारत 11 मुकाबले जीत चुका है। इससे पहले ग्रुप चरण में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। आज विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रतिवर्ष अल्जाइमर और डिमेंशिया रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये दिन इस बीमारी का शीघ्र पता लगाने, समय का उपचार करने और प्रभावित लोगों की उचित देखभाल के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।